देवियों सज्जनों, आप सबको नमन हो। हम गीता के 17 चैप्टर में हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जितने भी मनुष्य हैं उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। ऐसा नहीं है कि तीन तरह के इंसान होते हैं, लाखों तरह के हो सकते हैं, जनरली तीन कैटेगरी में बनाया। हर कैटेगरी में भी फिर बहुत सारे और कैटेगरी बनते जाएंगे, पर ओवरऑल तीन कैटेगरी में हम देखते हैं। हर चीज को करने के पीछे जो इंटेंशन होता है, जिस तरह की हमारी इनहेरेंट नेचर काम करता है, एटीट्यूड काम करता है, उसके बेस पर हम लोगों को तीन कैटेगरी में बांटने की इस चैप्टर में डिस्कस किया जा रहा है। अभी जो आज जो हम चर्चा करेंगे, लोग जिस तरह की तपस्या या जो साधना करते हैं उसके बेस पर हम कैसे कैसे अपने आप को एनालाइज करें कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। बोलिए मेरे साथ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि जो तपस्या हम करते हैं, तपस्या का अर्थ अपने सुख को पाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, तप का रियल मीनिंग होता है तपह द्वंद्व सहनम, द पेयर ऑफ अपोजिट्स, अलग अलग दो अपोजिट चीजों की जो जोड़ी है उसको सहने की आदत डालना। हमें एक तरह पर सहने की आदत है, हमें सुख अच्छा लगता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमें सुख मिले, और दुख से हम हमेशा डरते हैं। पर नेचर का एक रूल है, आप जिससे जितना ज्यादा डरेंगे वो उतना ज्यादा आपको डराता है। तो जितना ज्यादा आप उसको फेस करेंगे उतना ज्यादा आपका डर कम होगा, तो सामने वाला डर के भाग जाएगा। जनरली वो सबके जीवन में सुख दुख आता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसको फील करना सबका अलग अलग लेवल का होता है। क्योंकि जिसने अपने मन को जिस लेवल का स्ट्रांग बनाया है उसको उसी लेवल की फीलिंग होगी। कभी कभी छोटे से छोटे दुख में भी बहुत सारे लोग जल्दी टूट जाते हैं, कुछ लोग बड़े से बड़े समस्याओं में भी बहुत मजबूत बने रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को कैसे तैयार किया है। वो जो तैयारी करने की प्रक्रिया है उसे हम तप कहते हैं। ये सिर्फ हमें इस जीवन में हेल्प नहीं करता कैसे सोशल लाइफ में हम जिए, अपितु अध्यात्म में ईश्वर को पाने में, आत्मा को पाने में, प्रभु की कृपा पाने में, उस परम आनंद को पाने के लिए रास्ता भी खोलता है। इसलिए सारे योगी मुनि ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी तपस्या करते हैं, और आम लोग जो आम घर गृहस्थी में भी रहते हैं उनमें जो स्मार्ट होते हैं, ज्यादा समझदार होते हैं, वो भी इस तपस्या को करते हैं। क्योंकि जब आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो हमेशा तो सुख होता नहीं है, दुख होता है, परेशानियां आती है, संकट आता है, कितने तरह के मुसीबतें आती हैं। पर जब आप उसको झेलने के लिए तैयार होते हैं तो इजीली आप इसको हैंडल कर पाते हैं। अगर पहले से आप प्रिपेयर्ड नहीं है, फिजिकली मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, फिर आप जो भी काम करते हैं वो उल्टा पड़ने लगता है, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत इसी जो प्रक्रिया को हम तपस्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक बड़ा सुंदर कहानी है, वो हमेशा बोला करते थे, लेकिन बचपन में मैं एक बार मैं कहीं किसी गांव में जा रहा था, थोड़ा संकरीला रास्ता था, जंगली पेड़ पौधे थे गांव का रास्ता, और जाते हुए जब मैं जा रहा था तो वहां बहुत सारे बंदर थे। अब मैं बंदर से डरता था, तो जैसे ही बंदर के आसपास में हुआ तो बंदर ने खाऊं खाऊं करने लगा, तो मैं डर के मारे भागा। जब मैं दौड़ने लगा पीछे की ओर, तो मेरे पीछे वो बंदर सब दौड़ने लगे, तो मैं और डर गया। तो वहां एक भला आदमी था, उसने कहा, बाबा जी क्यों दौड़ रहे हो? बोला कि मेरे पीछे बंदर पड़े हुए हैं। बोला सुनो, आप खड़े हो जाओ और उनको सामना करो, तो अपने आप बंदर रुक जाएंगे और भाग जाएंगे। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मुझे डर तो लगा पर मैं उस व्यक्ति की बात सुन के रुक गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं भाग रहा हूं, मेरे पीछे बंदर भाग रहे हैं, तो मैं खड़ा होकर के मुड़ के बंदरों की ओर देखा, थोड़ा सा हिम्मत बांध के उनको बड़े बड़े आंखों में देखा, तो बंदर सचमुच रुक गए और थोड़ी देर के बाद भाग गए। तो बोले मुझे उस दिन ये सीख मिला, जब जीवन में संकट आए या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ हो तो दौड़ो मत, उसको फेस करो। सच बात है, लाइफ में आप कहां दौड़ेंगे, जगह चेंज कर सकते हैं। जगह बदलने से सुख या दुख नहीं बदलता ना, वो तो मन की स्थिति है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से ये प्रक्रिया अपनाई जिसे हम तपस्या कहते हैं। थोड़ी बहुत करते करेंगे तो आम जिंदगी भी बड़ा अच्छा बनेगा, ज्यादा करेंगे अगले जीवन की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, परमात्मा को प्राप्ति के रास्ता भी क्लियर होगा। तो वो तीन तरह का है, फिजिकली कैसे प्रिपेयर्ड रहते हैं, मेंटली, और एक चीज तपस्या बताया ओरली, वाचिक रूप से, वाणी से आप तपस्या करते हैं, मन से करते हैं और शरीर से करते हैं। शारीरिक तप कौन से हैं जो आपको अच्छा बनाने की कोशिश हेल्प करता है? ले देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देवता जो भी संसार में जिनका भी हमारे ऊपर कुछ कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया है, वो कोई इंसान हो या प्रकृति का कोई तत्व हो, वो हवा पानी पवन जंगल पहाड़ हो, पशु पक्षी हो, परमात्मा हो, या मेरे मां बाप, मेरे गुरु जिन्होंने शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया, हेल्प किया, मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, जो भी, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, जिनका भी मेरे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन है, जिनके कारण मुझे कुछ लाभ हुआ है, मैं आगे बढ़ा हूं, वो सब मेरे लिए देवता है। उन देवताओं के प्रति पूजा भाव रखना, रेस्पेक्टफुल भाव रखना। द्विज, पिछले बार हमने इसकी चर्चा की थी, जिनका दो जन्म हुआ है, जो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं हमसे ज्यादा, वो सब द्विज होते हैं। एक व्यक्ति पहली बार जन्म होता है मां के पेट से, अगर वैसा ही बना रहे, मतलब कोई प्रोग्रेस ना करे, इंटेलेक्चुअली कोई डेवलपमेंट ना हो, उसका कोई एजुकेशन ना हो, कुछ ज्ञान ना हो, तो उसका जो सोच है, उसका जो प्रॉब्लम आने पर उसके जो सोल्यूशन वो ढूंढता है, वो किसी जंगली जानवर से ज्यादा बेहतर नहीं होता। पर जब हम पढ़ते लिखते हैं, हमारी नजरिया अलग होती है, हमारा समझ अलग होता है, दुनिया को समझने की दृष्टि अलग होती है। इसीलिए जो द्विज होता है, और वो इसीलिए वो दूसरा जन्म होता है हमारा, पिछले बार इसकी चर्चा की थी कैसे होता है। तो इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं उनके प्रति सद्भाव रखना, सम्मान भाव रखना, प्राज्ञ जो वाइज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, ऐसे लोगों, और गुरु जिन्होंने हमें कुछ ज्ञान दिया, किसी भी तरह का ज्ञान दिया, ऐसे लोगों के प्रति अगर हम रेस्पेक्टफुल होते हैं, ये बताने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जनरली हम नहीं हो पाते, कभी कभी हम करने की कोशिश भी करते हैं तो होता नहीं है, क्यों, अंदर हमारा ईगो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग होता है, हमें किसी के सामने झुकने के लिए, किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए थोड़ा अपने आप को कम बनाना पड़ता है, और ज्यादातर हम ऐसा नहीं कर पाते, हम ये मानने को तैयार नहीं हो पाते हैं कि मेरे से कोई ज्यादा बड़ा होगा किसी भी मामले में। तो वो हमें मजबूर करता है कि मैं किसी को रिस्पेक्ट कितना दूं या ना दूं। तो जनरली हम रिस्पेक्ट उन लोगों को, ज्यादातर लोग देने की कोशिश करते हैं जिससे या तो वो डरते हैं या कोई पर्सनल फायदा लिया था या लेने वाले हैं या जो भी होता है। पर एक सिविल पर्सन जो सभ्य व्यक्ति है, उसको उससे कुछ फायदा है नहीं है, जब फायदा कहते हैं इट्स नॉट ऑलवेज इन फाइनेंशियली या समथिंग, सोशियली हो, किसी भी तरह का हो, लोकेशणा वित्तेषणा बहुत तरह की इच्छाएं होती हैं, रिकॉग्नाइजेशन भी एक बहुत बड़ी बात होती है, लोगों के अंदर खुटखुट के भरा होता है और बहुत खतरनाक होता है, पैसे की इच्छा से ज्यादा डेंजरस होता है रिकॉग्नाइज होने की जो इच्छा है, वो लोगों को कुछ भी करवा देता है, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। पर जब हम थोड़ी बहुत अपने मान को अपने अहं को कम करते हैं तो फिर हम इन लोगों को सम्मान दे सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम कुछ ना कुछ कमी ढूंढते हैं, इनको क्यों ना रेस्पेक्ट ना करने के एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। किसी को रेस्पेक्ट करने से सामने वाला बड़ा नहीं होता है, हमारा मन ज्यादा अच्छा होने लगता है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अच्छा काम आप किसके लिए करते हैं, आप किसी पर एहसान नहीं करते, आप अपने पर एहसान करते हैं। कैसे? आप अपने आप को अंदर से अच्छा बनाते हैं, और जब आप अच्छा बनते हैं उसका जो डिविडेंड होता है वो आपको मिलता है। मान लीजिए मेरा ईगो कम होता है किसी भी तरीके से, तो उसका जो सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा वो मुझे मिलेगा, सोसाइटी को नहीं मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट पर्सन वो है जो दूसरों को किसको रेस्पेक्ट करना जाने, इसीलिए नहीं कि आप रेस्पेक्ट करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके अंदर का बदलाव होगा। शौचम, अपने मन और शरीर को साफ रखना, सिंपल सी बात है, शरीर को हमेशा साफ रखने की कोशिश करना। इसीलिए हमारे यहां ये ट्रेडिशन शुरू से रहा है, ऑल्दो हम हर हर ट्रेडिशन को बड़े ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाता है कि आप रसोई घर में घुसते हैं या पूजा करने जाते हैं, हवन करने जाते हैं, संध्या करने जाते हैं, तो आपको नहा धो करके करना है। आज भी पुराने जो दादा दादी या पुराने लोग बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बहुत गंदा लगता है और वो डर जाते हैं अगर उनके घर में कोई बिना नहाए पूजा करने हवन करने संध्या करने जाता है तो टोकते हैं, ये बड़ा पाप है। पाप पुण्य का मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे, पाप मतलब ये गलत है। जब आप शौच होते हो, शुद्ध होते हो, अपने मन और शरीर को साफ रख करके कोई चीज करते हो, इवन आप ऑफिस भी जाते हो काम करने के लिए, अगर आप फ्रेश हो, नहा धोए हो, पेट आपका साफ है, मन साफ है, अच्छे कपड़े पहने हो, बढ़िया चीजें पहने हुए हो, काम पर जाते हो, तो आप जो लाइट मूड में जाओगे तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे, ज्यादा बेटर लोगों के साथ डील कर सकते हो। अगर आप बोझ लेकर के जाते हो, तीन दिन से नहाए नहीं हो, कपड़ा दो दिन का वैसे ही पहना हुआ है, खाने पीने की ठिकाना नहीं है, पेट वैसे ही ठीक नहीं है, चले गए, क्या काम करेंगे, कौन सा मन लगेगा, बहुत बड़ी बात होती है, आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है हमारी जो क्लीनलीनेस। जरूरी नहीं कि हर चीज आप सब लोगों के लिए हो, क्योंकि आप लोग बड़े भद्र हैं, आप ज्यादा ज्ञानी समझदार हैं, पर यह एक ओवरऑल यूनिवर्सियल विचार है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, उनके जो चीजें यहां बताया जाता है वो सब सामने बैठे हुए लोगों के नहीं, जो बोलता है उसके लिए भी लागू होता है, और जो यहां नहीं है उनके लिए, ये यूनिवर्सियल चीजें हैं। हो सकता है इनमें बहुत सारी चीजें आप में से बहुतों के लिए लागू ना हो, पर दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके लिए लागू होता है। आर्जवम, सरलता, सीधापन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो मन में है वो वाणी में है, सिंप्लिसिटी। तो जब आपके अंदर वो आर जब आने लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आने लगेगा, कुछ लोगों में बाय नेचर होता है, कुछ लोग कल्टीवेट करते हैं। जो कल्टीवेट करना उसी का नाम तपस्या है। जो हमारे पास कुछ अच्छे गुण नहीं है उसको हम कल्टीवेट करते हैं। टाइम लगता है, किसी में जल्दी होता है, किसी में देर लगता है, पर उस प्रोसेस का नाम तपस्या। और जो भी तपस्या करता है वो अच्छे रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करता है। मन और वाणी को एक जैसा बनाए रखना, जैसा अंदर हो ऐसा बाहर हो, दिखाने की प्रवृत्ति ना होना, शोइंग नेचर ना होना, ना वाणी से ना शरीर से, अंदर और बाहर समान, जैसे भी हालत हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी कंसिक्वेंस हो, उसके लिए रेडी रहना। मुश्किल है, सिंपल बनना। ब्रह्मचर्यम, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, भोग की इच्छा को कंट्रोल करना, अहिंसा, हिंसा ना करना, किसी के प्रति मन में ये भाव ना रखना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भावना ना रखना, ये सब शारीरिक तप है। हमने पिछले बार इसकी चर्चा की थी, आगे हम करेंगे आज वांग्मय तप, वाणी की तपस्या कैसे करेंगे। जो हम बोलते हैं उसकी भी एक तपस्या होती है। बोलिए, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी की तपस्या क्या है? जो हम बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं हम, बहुत कुछ बोलना क्या हम बोलते हैं उससे ज्यादा वो कम मैटर करता है, ज्यादा मैटर करता है कि हम कैसे बोलते हैं। इसलिए इवन आप वेद नहीं भी पढ़ते हैं, पर हवन में जो वेद मंत्र आप सुनते हैं, उसकी कभी कभी अंग्रेजी ट्रांसलेशन वगैरह देखते हैं, या संस्कारों में, शादी में, बाकी चीजों में जो मंत्र बोले जाते हैं, उनमें बहुत सारे मंत्र रिपीटेडली एक बात को दोहराते हैं। क्या? कि मीठा बोलो। क्यों इतना रिपीटेशन क्यों होता है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है। नेचुरली हम अच्छी बात को भी ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला दुखी हो जाए। हमारी वाणी में कटुता बहुत होती है। और मजेदार बात पता है क्या है? हम अनजान लोगों से कटु बात कम करते हैं, हम अपनों से सबसे ज्यादा कटु बोलते हैं। पति और पत्नी, मां बाप बच्चे, फ्रेंड्स में, एक जिनके साथ काम करते हैं, वगैरह वगैरह। और ये क्योंकि ये एक नेचर है ह्यूमन बींग का, इसीलिए शास्त्र उन्हीं चीजों को बताते हैं जो पता है कि कुछ यूनिवर्सियल प्रॉब्लम है या यूनिवर्सियल सच है। ये इंसान का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि सब ऐसा करते हैं, कुछ लोग बाय नेचर बड़े मीठा बोलते हैं, पर आर्टिफिशियली मीठा बोलना भी उतना ही खतरनाक है। वो किसी को इंप्रेस नहीं करता, उल्टा इरिटेशन पैदा करता है। कोई भी चीज आर्टिफिशियल होता है वो किसी को अच्छा नहीं देता है, ये इरिटेशन ज्यादा पैदा करता है। ये नेचर नहीं, नेचर में आना चाहिए, ये हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। क्या? पहला, अनुद्वेग करम वाक्यम। तो ये प्रैक्टिस करना तप है। क्या? कि हम ऐसी वाक्य बोलें जो सामने वाले के अंदर कोई स्ट्रेस पैदा ना करे, कोई तनाव पैदा ना करे, उद्वेग पैदा ना करे, किसी को हर्ट ना करे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम झूठ बोलें, तारीफ करें, झूठा तारीफ करें। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, टॉकिंग अबाउट द स्टाइल ऑफ सेइंग। कौन सा, किस तरीके से हम बात करते हैं वो हर्ट करता है, न कि आप क्या बोलते हैं। देखिए सज्जनों, ये ध्यान रखिएगा, सच कभी कड़वी होती है। जनरली जो हमारी एक कहावत है, सच तो बड़ी कड़वी होती है, तो मैं क्या करूं अगर आपको मिर्ची लगी, मैं तो सच बोलता हूं, ये बड़ी झूठ बात है। सच कभी कड़वी होती है ऐसा नहीं है। हमें सच को कब बोलते, किस इंटेंशन के साथ बोलते, उस पर डिपेंड करता है कि वो कड़वी है या मीठी है। अगर सच इसीलिए बोलते हैं कि सामने वाले को चुभे, तो नेचुरली उसको चुभेगा। पर इसीलिए आपने सच नहीं, पर यो सच नहीं होता है। अगर आप चुभाने के लिए सच बोलते हो, वो कहते हैं वो झूठ से भी बड़ा बदतर होता है। पिछले रविवार को हम सुन रहे थे अहिंसा के बारे में। पतंजलि ने ये क्लारीफाई किया, इवन अगर सत्य को आप एक अस्त्र बना के दूसरों को कष्ट देने के लिए सत्य बोलते हो, मतलब आप सच इसीलिए आज बोल रहे हो, इस सिचुएशन में बोल रहे हो क्योंकि सामने वाले को हर्ट करना है, तो वो सच बड़े से बड़े पाप से भी खतरनाक पाप होता है। वाणी मीठी हो आम लोगों के लिए मुश्किल है, पर उसके लिए प्रैक्टिस करना तपस्या है। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, सत्य बोलना है ये तपस्या है, क्योंकि हम हमेशा सत्य नहीं बोलते, तो सत्य बोलने की प्रैक्टिस करना तपस्या है। पर वो सच बोलने को, सच वाणी जो बोले वो मीठी हो, ये और बड़ी तपस्या है। और तीसरी चीज बताया, वो हितकारी हो, बेनिफिशियल हो, किसी को फायदा करे, नुकसान करने के लिए सच नहीं बोले, तो वो तीसरा तपस्या है। मनुस्मृति में उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, बोला सच बोलना चाहिए सबको, पर प्रिय सत्य बोलना चाहिए। प्रिय समझते हैं जो अच्छा लगे, मीठा। प्रियम ब्रूया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कड़वे सच मत बोला करो, तो आपको लगेगा मतलब हमें लाइसेंस मिल रहा है कि हम झूठ बोलें। अगली लाइन बोलती है प्रियम चनान रतम ब्रूयात, पर इसका अर्थ नहीं क्या मीठा झूठ बोलो, ये भी पाप है। झूठ बोलना तो पाप ही पाप है। सत्य बोलो पर सत्य मीठा हो। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, इटर्नल यूनिवर्सल रूल है। कोई अंधा है, आप इसको सामने बोलोगे हे अंधा इधर आओ, आप तो सच ही बोल रहे हो, पर सच बात है कि आप सच नहीं बोल रहे थे, आपका इंटेंशन सच बोलना नहीं था, आपका इंटेंशन चला कि अंधा को अंधा कह के बेइज्जत किया जाए, उसको हर्ट किया जाए। ये जो सच है, आप सच बोलने के लिए सच नहीं बोल रहे थे, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोल रहे थे। जब किसी की बुराई आप अपने फायदे के लिए करते हो, तो और उस बुराई को सच का नाम के देकर करते हो, वो गलत से भी गलत होता है। इसीलिए कहा कि वाणी ऐसी बोलो जो मीठी हो, सत्य हो और दूसरों के उपकार करने वाला हो। अगर इनमें से कोई इसमें नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मौन रहें, चुप रहें। मुश्किल है नेचुरली, कोई नहीं कह रहा है कि ये बड़ा आसान है, हम सब इंसान हैं और एक इंसान की एक अलग टाइप की प्रवृत्ति है। पर अगर कोई इस रास्ते पर चल पड़ा है, तो वो तपस्या करता है, और वो कौन सी तपस्या, वाणी की तपस्या है। तपस्या हम क्यों करते हैं, नेचुरली आखिर में सुख भोगें, अगली तपस्या है मन की। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। उसको ऐसे कर लीजिए, राइट वाली है, हाँ बंद हो गया। मन का प्रसाद, सेरेनिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी, क्रिस्टलिटी। अभी हेमंत का इंडियन ऋतुओं के अनुसार हेमंत ऋतु चल रहा है, थोड़ा शीत से जिसको आप कहते हैं प्री विंटर, उससे पहले शरद काल होता है। ये जो एक दो महीने होता है अक्टूबर नवंबर, आकाश देखेंगे बिल्कुल साफ दिखेगा, पानी बिल्कुल साफ दिखता है, गंदा पानी भी पानी, गंदगी बैठ जाती है पानी दिखता है शरद काल में, हर चीज वहां दिखता है। अगर पानी में मछली खेल रहा है तो आपको दिखेगा, वो जो क्लैरिटी है पानी में, जब वही सिचुएशन मन में आ जाए साफ क्लियर, दैट इज सेरेनिटी ऑफ माइंड। ये कब होता है? हम बहुत सारे अननेसेसरी अकारण, विदाउट एनी रीजन, बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे तरीके से हम अपने मन को बहुत कीचड़ भरा बनाते हैं, इसलिए नहीं कि उससे हमें कुछ फायदा मिलता है, पर पता नहीं क्यों हमें लगता है कि यही बेटर वे है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने आप को बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, अननेसेसरी बातों को छुपाना, झूठ बोलना, अननेसेसरी, जिसके ना कोई खुद को लाभ है ना किसी दूसरे को भी लाभ है, कुछ नहीं, बस एक किसी कारण से एक आदत पड़ चुकी होती है, हर बात को बड़े कॉम्प्लिकेटेड बनाना, सोचना, सीधी बात को भी गलत तरीके से सोचना, हर चीज का एक दूसरा एंगल ढूंढना, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, आपके ही फ्रेंड है, पार्टी में मिले कुछ बोल दिया, घर में जाकर आप उसकी दूसरी मीनिंग ढूंढ रहे हैं, उसने ऐसा क्यों बोला। अगर थोड़ी आपकी उनके साथ जेलेसी का रिलेशनशिप है तो उस शब्द का, उस वाक्य का मीनिंग तो इतना गहरा हो जाता है पूरी पीएचडी बन जाएगी कि उसने क्यों कहा ऐसा। अगर जेलेसी की रिलेशनशिप बीच, अब ये जेलेसी है कि नहीं किसको पता होगा, खुद को पता होगा और किसी को नहीं, तो हम अपने मन को इतना ज्यादा कीचड़ से भरा करते, इसीलिए हमारे रात की नींद भी अच्छी नहीं होती है, दिन का समय भी ठीक से नहीं बीतता है, बहुत सारे कारणों से मन बेचैन रहता है। अगर मन की इन कीचड़ों को हम साफ कर सकें, हम ठाने डिटरमाइंड बने कि मैं हर चीज को सीधा लूंगा, कोई टेढ़ा अगर कैसा भी कॉन्सिक्वेंस हो, कैसा भी रिजल्ट हो, अच्छा बने बुरा बने, मैं स्ट्रेट जाऊंगा, जो बोला वही समझूंगा, जो मैंने कहा जो सोचा वही बोलूंगा, कोई दूसरा गलत मीनिंग ना लूंगा। ये तब होता है जब हमारे मन में लोभ, लालच, मोह, अटैचमेंट, अननेसेसरी अटैचमेंट, एक अटैचमेंट होता है जो अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं है, पर ठीक है रिलेशनशिप में होता है, पर एक होता है अननेसेसरी अटैच्ड होना। अब देखेंगे लोग 70-80 साल के हो गए, चलो बच्चों से अब अटैचमेंट समझ में आता है, वैसे कम होना अच्छी बात है, बिल्कुल छोड़ दे अच्छी बात है, छोड़ना वाला अटैचमेंट छोड़ दे, बच्चे छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, अटैचमेंट कम करे, जितना बिल्कुल बंद हो जाए उतना अच्छा है। अटैचमेंट से प्यार का कोई रिलेशनशिप नहीं है देवियों सज्जनों, आप प्यार करना अटैचमेंट होना दो अलग अलग चीजें। पर प्यार करते करते हम प्यार भूल जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, फिर प्यार के जगह ओनरशिप झाड़ने लगते हैं, फिर हम बच्चों से प्यार कम करते हैं, मालिक ज्यादा बन जाते हैं बच्चों के, सोचते हैं कि मैं प्यार करता हूं या करती हूं इसीलिए ये सब कर रहा हूं। ज्यादातर मां बाप जो बच्चों से ठीक से बिहेव नहीं करते इसीलिए नहीं कि वो प्यार करते हैं कि जे मुझे उसको अच्छा इंसान बनाना इसीलिए करना पड़ता, नहीं, उनके अंदर कहीं ओनरशिप की फीलिंग आ गया है, मैं इनका मालिक हूं, मैं जैसे भी करूं। एक होता है अटैचमेंट, जो कि वैसे ही बड़ी अच्छी बात नहीं है। अब 70-80 साल में भी आप अपने ग्रांड बच्चों से भी, ग्रांड चिल्ड्रन में भी इतने अटैच्ड हैं कि आपकी भी उनको बुखार हो गया तो आपकी 3 दिन की नींद नहीं आती है। इट्स टोटली अननेसेसरी अटैचमेंट, इससे किसी को फायदा नहीं होता है। जिसके साथ अटैच्ड है वो भी दुखी है तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम हमेशा उसके आगे पीछे पड़े रहते हो, उसको कोई फ्रीडम नहीं मिलता और खुद भी दुखी रहते हैं। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट, इल्यूशनरी, लोभ, मोह, क्रोध, इंच और जेलेसी, जो भी नॉर्मल चीजें आप जानते हैं, इस सब मन को हमारा ज्यादा कीचड़ वाला बनाता है। अगर ये कम होते गए, मन ज्यादा क्रिस्टल होता जाता है, साफ होता जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रसाद का दूसरी मीनिंग पता है, संस्कृत हिंदी में प्रसन्नता कहते हैं ना, कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वो बड़े प्रसन्न है। प्रसन्न का आप सिंपल मीनिंग क्या लेते हैं? खुश है। आपको पता है प्रसन्नता का रियल मीनिंग होता है क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। इसका अर्थ क्या हुआ? जब भी आपके मन में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो आपका जो आपकी फीलिंग होगी उसी को आप खुशी कहते हो। तो मन को इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट करो, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितने खुशी में आप जिएंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी, संकट में भी। ट्रांसपेरेंट होना ही, मन का ट्रांसपेरेंट होना ही खुश होना। मन प्रसाद मतलब मन की शांति, पर मन की शांति तभी आती है जब मन में ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो, क्रिस्टल क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है? आप खुद अपने मन को समझ पाओ, पब्लिक को तो छोड़ दो, रिश्तेदार समझे ना समझे। शादी को 50 साल हो गया, समझ में नहीं आता है पत्नी क्या कब रिएक्ट करती है, क्यों पति को नहीं समझ, पत्नी को नहीं समझ में आता है पति को क्या हो जाता है। चलो रिलेटिव को तो छोड़िए, वो समझ नहीं पाते, खुद को तो समझो। मुझे ही नहीं समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मतलब मन को इतना ज्यादा कीचड़ से भरा कर दिया है, खुद को ही नहीं समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। बड़ी मुश्किल है शांति में रह पाना फिर। इसलिए जरूरी है मन को इतना साफ करो कि खुद तो समझ जाओ मेरी प्रॉब्लम कहां पर है, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूं, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों हो रहे हैं। खुद को समझ नहीं आता क्योंकि हमारा मन इतना ज्यादा, जैसे आप अपने आपके घर में कोई जाएगा रूम में, बड़े आप सलीके से सामानों को रखते हैं, आपको पता है कौन सा सामान कहां पर है, फट से निकाल देते जरूरत पड़ने पर। कोई नया आदमी भी आता है, आप उसको बता देते हैं कि देखो ये ऐसे रखा है, उसको ज्यादा देर नहीं लगता, 4-5 मिनट में वो सामान ढूंढ लेगा, क्योंकि आप बड़े जतन से कहां जो चीजें जहां है रखा है। पर जो आप जब आपको होर्डिंग की बीमारी हो, या आपका कोई रूम है जहां आप लाते हैं वहां होर्ड कर देते हैं, और आपको कोई जरूरत चीजें जरूरत पड़ती है, आपको सुबह 10:05 की जरूरत पड़ी, शाम को 4 बज चुका है, अभी भी आप ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं है कहां पड़ी है। होता है किसी किसी के लिए, मैं थोड़ा एग्जाजरेट कर दिया, तो 10:15 को ढूंढ रहे हैं तो 11:15 को मिलेगा, तो अब ये ज्यादा एग्जाजरेट नहीं हुआ, पर कुछ लोगों के लिए हो जाता है, 4-5 दिन के बाद भी मिलता है। मन की हालत यही हो जाती है देवियों सज्जनों, हम अपने मन को इतना ज्यादा कुछ कचड़े और कूड़े से भर देते हैं। समझ में नहीं आता है कि मेरा रिएक्शन क्यों हो रहा है, खुद को नहीं समझ में आता है, सामने वाला तो मजबूरन क्या करेगा, वो तो रिश्ता निभाने के लिए मजबूरन साथ दे देता है या दे देती है। इसलिए मन का प्रसाद मतलब कोशिश करना मन निर्मल बने, ट्रांसपेरेंट बने, सौम्यत्वम, गुड हार्टेडनेस, सबके प्रति, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, उनके प्रति भला मन रखना, कोई खराब भाव नहीं रखना। समस्या है कि हम अपने रिलेशन के सर्कल में भी अच्छे भाव नहीं रख पाते, सभी के प्रति मन में अच्छा भाव रखना वो सौम्यत्व में, सॉफ्टनेस, सबके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखो, वो मेरा बच्चा हो, पड़ोसी का बच्चा हो, दुश्मन का बच्चा हो, इवन वो दुश्मन भी हो, अगर उसको कहीं दुखी है, परेशान है, और मुझे कभी मौका मिला कि मैं उसके दुख को दूर करने में किसी तरह हेल्प कर सकता हूं, आप रेडी हो जाइए। अगर हो जाते हैं तो वो आपकी सौम्यत्व है, गुड हार्टेडनेस है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कम है तो उसको ज्यादा कल्टीवेट करने की जरूरत है, उसी के नाम तपस्या है। मौनम, चुप रहना, कभी कभी चुप रहा करें। मैं मजबूरी में चुप रहने की बात नहीं करता हूं। अब क्या है, अब यहां तो बहुत सारे समय आपको चुप रहना ही पड़ता है, अब वो मौन नहीं है, कोई है ही नहीं तो किससे बात करेंगे, सब छोड़ छाड़ के चले गए, बच्चे अपने जगह, वो अपने जगह, वो सब तो अपने जगह, कोई है ही नहीं बात करने को, अब किससे बात होती है, मन में ही मन बात करता है। आप चुप नहीं होते, जब आप अकेले होते हैं तो आप चुप नहीं होते हैं। बड़े से घर में एक आदमी पड़ा है, दो आदमी पड़े, वो दो आदमी भी पड़े, वो अपने कमरे में, अपने कमरे में, अगर एक ही जगह बैठे हैं, वो अपने टीवी देख रहा है, वो अपने सेलफोन में लगा हुआ है, घर में सन्नाटा है, शांति नहीं। शांति और सन्नाटा में अंतर होता है ना, श्मशान में सन्नाटा होता है, शांति नहीं होती है। सन्नाटा में, अशांति में अंतर क्या है, शांति जहां खुशी के साथ जुड़ा हुआ होता है, सन्नाटा ऊपर से बंद है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मन में पूरी तरह बातें, बड़ा जोर शोर से बातें चल रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वाणी में कुछ बोलने वाला है ही नहीं तो क्या बात करूं, वो मजबूरी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पास फैसिलिटीज हैं, सामर्थ्य हैं, पर मैं तब भी नहीं बोल रहा हूं, कुछ समय के लिए बोल रहा हूं, मतलब सिर्फ वाणी से नहीं, मन से विचार भी नहीं आने दे रहा हूं, वो है मौन, चुप रहना, साइलेंस। आपको पता है मौन एक बहुत बड़ी तपस्या है, प्राचीन काल के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक भी जो लोग साधना में, अगेन वही तपस्या में जाते हैं, वो मौन की तपस्या शुरू करते हैं, कम से कम बोलें, फिजिकली ओरली कम से कम बोलें, पर वो उससे कुछ होने वाला नहीं है, पर वो एलिमेंट्री स्टेज है, मन में विचार धीरे धीरे कम करें, मजबूरी में नहीं, चाहकर कि मुझे आज किसी भी तरह के मन में विचार नहीं आने देना, सिर्फ मैं ही मुझे रहना है, और कोई चीज ना मेंटली ना ओरली ना फिजिकली मेरे आसपास होगा, दैट इज कॉल्ड मौन। आत्म विनिग्रह, अपने आप को कंट्रोल करना, इंद्रियां भटकती हैं, मन भटकता है, उनको रोकना, भाव संशुद्धि, अपनी जो फीलिंग्स है उसको शुद्ध करना, प्योर करना। फीलिंग्स को प्योर कैसे करेंगे, नेचुरली जो ऊपर की चीजें आपकी ठीक हो, मन अगर आपने कोशिश किया मन को निर्मल बनाने के लिए, निर्मल समझते हैं जहां कोई मल ना हो, गंदगी ना हो, कीचड़ रहित हो, साफ हो, साफ पानी, ऐसी साफ पानी जिसमें नीचे भी 4 फुट 10 फुट नीचे भी मछली तैरती है छोटी सी तो आपको दिखाई दे। मन ऐसा निर्मल कि उसके सबकॉन्शियस में भी क्या विचार आ रहे हैं आपको पता चले कि मेरे सबकॉन्शियस में क्या, क्यों मैं ऐसा रिएक्ट करता हूं, आपको पता चले, पब्लिक को नहीं, रिश्तेदार को नहीं, आपको पता चले। जब आपको पता चलने लगेगा आपके मन में क्या हो रहा है तो बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अपने आप का हमारा जो फीलिंग्स हैं, दूसरों के प्रति जो इमोशंस हैं, वो अच्छा होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। शत्रु के प्रति भी हमारे भाव में एक प्यूरिटी होगी, हम लड़ेंगे उसके साथ, जरूरत पड़ने पर लड़ेंगे, पर उस लड़ाई में कीचड़पन नहीं होगा, एक साफगोई होगी। इति एतत् तपो मानसमुच्यते, ये सब मानसिक तप है, और इन तीनों तरह का जो मानसिक, शारीरिक और वाचिक तप है, इनको अगर आप सारा करते भी हैं, इन सबको करते हुए आप किस तरह का माइंडसेट रखते हैं उससे डिपेंड करता है कि आप राजसिक हैं या तामसिक हैं या सात्विक हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी एक व्यक्ति राक्षस बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, इन सब कुछ को करते हुए भी एक व्यक्ति राक्षस बन सकता है, देवता बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, कैसे अगली बार चर्चा करेंगे।